आप देखिए कि बीबी मरियम कुमारी लड़की हुजरे में बैठी हैं और खुशखबरियां इतनी बड़ी बड़ी मिल रही हैं, उनको उन खुशखबरियों से क्या लेना। वो तो बोली आयत 47, कालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन। मरियम अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो ताज्जुब से कहने लगी कि मेरे रब, मेरा बेटा कैसे होगा जबकि मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। ये है असल में नुक्ता यहाँ से बीबी मरियम के किरदार का जिस पे हम बात करेंगे कि वलम यमससनी बशर, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। قال كذلك الله يخلق ما يشاء, फरमाया इसी तरह अल्लाह तख्लीक फरमाता है जो कुछ चाहता है। यानी अल्लाह को परवाह नहीं है, अल्लाह को इस तरीके की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला असबाब को नहीं देखता, जब चाहता है हो जाता है। क्योंकि इज़ा क़ज़ा अमरन فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, वो तो जब किसी अमर का फैसला कर लेता है तो इससे कहता है कि तू हो जा, तो वो हो जाता है। अब आप देखिए जो कुन फयाकुन का मालिक है, उसको किसी बच्चे बच्ची और उसके काम के पैदा करने और उसकी चीज़ों को बदलने कराने में क्या मुश्किल हो सकती है। यहाँ देखिए कि हजरत मरियम का किरदार, हम सब इस पे गौर करेंगे। पिछली आयतों में हमने क्या देखा कि बीबी मरियम के पास तन्हाई में एक फरिश्ता आया, कहाँ थी, हुजरे में थी। अब अगर आप सूरत मरियम को साथ मिला लें और उसकी एक आयत के जिसमें एक लड़की के पास एक फरिश्ता आता है और फरिश्ता उसको खबर देता है बेटे की, लेकिन इससे पहले उस लड़की के दिल की हालत क्या होती है। आयत का नंबर नोट कीजिए 17, सूरत मरियम। फत्तखजत मिन दूनिहिम हिजाबन, बस वो उनसे दूर एक ओट में चली गई। यानी बीबी मरियम अपनी जवानी में इबादत करती थी, लोगों से छुपके करती थी, रियाकारी और दिखावा ना हो जाए। फरसलना इलैहा रूहना, फिर हमने उनके पास अपनी रूह में से एक भेजा, यानी फरिश्ता भेजा। और कौन आए थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। और आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि फरिश्ते इंसानी रूप में आते हैं, आम लोगों को पता नहीं चलता कि इंसान है या फरिश्ता है। फतमसल लहा बशरन सवीया, वो एक बशर, बिल्कुल ठीक ठाक बशर की शक्ल में था। एक लड़की हुजरे में बैठी है और बशर को देखती है, क्या सोचा होगा, हेलो हाय हाउ यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम। आज आप देखिए जो चिट चैट शुरू हो जाती है ना, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। एक लड़की एक लड़के को तन्हाई में देख के कहती है, कालत इन्नी आउज़ु बिर्रहमानी मिनका, कहने लगी मैं तो रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे, यानी कि तुम यहाँ कैसे आ गए। इन कुंता तकिया, यानी अगर तुम्हारे अंदर कोई तकवा है, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो चले जाओ। अब ये उस औरत का एक बिल्कुल सडन रिफ्लेक्शन था, लेकिन फरिश्ता बोला, काला इन्ना माना रसूल रब्बी की, कब फिक्र ना करो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक रसूल हूँ, ली अहबल की गुलाम ज़किया, ताकि मैं अता करूँ तुझे एक पाकीज़ा लड़का। तो फिर आगे उनके वही जुमले हैं जैसे इधर हैं, कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी बशर ने छुआ नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। आप देखिए कि आज क्रिश्चियनिटी की सारी बुनियादें गिर जाती हैं बीबी मरियम के इस एक जुमले पे। अगर आज की क्रिश्चियनिटी को आप खोलें, जो मैरी का कड़ा पहनते हैं, मैरी के साथ नस्बतें, हैप्पी मैरी, मैरी क्रिसमस सुनते ही है ना आप, आते हैं आज उनके अपने कल्चर में क्या है, क्या लिविंग टुगेदर के अकीदे पे चोट पड़ती है इस जुमले से, बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप। आज पूरे का पूरा कल्चर जिना और बदकारी पे मबनी है, और उनको देख के उसके जरासीम मुसलमानों में भी आ गए, वो भी कहते हैं आप जवानी में कोई एक तो हो, सबसे तो हम नहीं बातें करते, एक से तो करते हैं, एक के साथ हम रह सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि एक मर्द एक औरत के साथ तन्हा ना हो, चाहे वो ये कहे कि मैं उसको कुरान पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो कुरान वाली बात है ना, ये एक कॉल है बाद में किसी का, असल हदीस क्या है कि जब एक मर्द और एक औरत होते हैं तो उनके अंदर तीसरा शैतान होता है, और शैतान उनसे अच्छी बात तो नहीं करवाएगा ना। अब आप देखिए कि इस रूल को आप सामने रखें और आज के कल्चर को सामने रखें, बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रख के हालात पे बात करता है। आज आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, दोनों तरह से देखें, मैंने इस मौजू पे लोगों से कभी भी बात की है तो फिर ज़ाहिर है कि लोग भी आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। अमूमन क्या देखा गया है, अमूमन एक चीज़ कहने की है, आप इमेजिनेशन में लाइए कि एक बच्ची है या बच्चा है, कोई भी है। सोसाइटी का असर पहले देखें। एक बच्चा एक उस माहौल की बात है जहाँ बिल्कुल इस्लाम है, फितरी माहौल है, इनोसेंस है, कोई गंदे ऐड नहीं बाहर लगे हुए, इश्तेहार नहीं लगे हुए, लड़कियों की भी नजरें पाक है, लड़कों की भी पाक है। वहां के हालात इस्लाम क्या बताता है कि एक औरत की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी क्या है कि वो जब भी बाहर जाती है, जिधर भी है, घर से बाहर है, शहर से बाहर है, रात बसर करती है, तो उसका महरम उसके साथ हो और उसकी इजाजत हो। ये बातें मौजूद है ना, ये मौजूद इस वक्त नहीं है, यहां सिर्फ हम इसकी बात करते हैं। आज फी जमाना लड़के और लड़की के तन्हा होने की क्या मुमकिन सूरतें हैं? आप देखिए कि स्कूल कॉलेज से ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं। पूरी क्लासरूम में कोई तन्हा हो या अलग से तन्हा हो, दोनों को देखा जा सकता है। फर्क तो ऑफकोर्स बहुत होगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखने की जरूरत है। बस जॉब्स ऐसी बच्चियां करती हैं कि जहां उनको किसी डॉक्टर की सेक्रेटरी बन के बैठना पड़ता है। एक ऑफिस है सजा संवरा और उसमें सेक्रेटरी बैठी है, चाहे वो उनकी रिसेप्शनिस्ट है या कुछ भी है। फर्क तो होगा, देखिए हम एक मामले को दो जगह नहीं कर सकते, फर्क तो होगा, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। इन सारी चीजों पे भी नजर रखने की जरूरत है। जब एक औरत बाहर निकलती है खासतौर पर कमाने के लिए, कितनी हदें टूटती हैं और फिर जाके वो कहीं बात बनती है। हत्ता कि आप देखिए कि डॉक्टर पे आप दिखाते हैं, आप और मैं, हम अल्लाह ना करे बीमार हो जाते हैं, एक डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, आप डॉक्टर के ऑफिस में हैं, डॉक्टर के बेहतर केयर के साथ दूसरा हो। हर जगह नहीं भी मुमकिन ना, तो कम अज कम इंसान फत्तकुल्लाह मस्तता तुम के दर्जे पे तो काम करे। बस अब होता क्या कि आप देखिए कि घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसको क्या करें? अब ये भी एक क्वेश्चन है। आप में से कोई कह सकता है ठीक है जी हम जॉब नहीं करते, लेकिन एक घर है, कोई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, मतलब चचा ताया के बच्चे हैं, बेटे भी हैं बेटियां भी हैं। हमेशा याद रखिए कि इस्लाम का असूल घर के अंदर और घर के बाहर का फर्क है। इंशाल्लाह सूरत नूर और सूरत अलहज़ाब जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसको महसूस करेंगे। और अजीत हम पर्दा करते हैं, बुरके पहनते हैं, निकाब करते हैं, दिल चाहे तो ग्लव्स भी ले लें इसमें, और हमारे घर के गैर महरम रिश्तेदारों में हमारा फर्क होगा। घर में इंसान सिक्योर होता है, वहां खुदा न खास्ता ये बुराई के इम्कान नहीं होते। इवन आप देखिए कि अगर आप देखें तो बाप और बेटी जो महरम है उनको भी तनहा एक वक्त कमरे में घर में रहने में शैतान बरगला सकता है। सगे भाई बहन, हदीस में आता है कि जब लड़के लड़के जवान हो जाएं तो उन दोनों के बिस्तर अलग कर दो। लड़की लड़के का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वजह क्या है? क्योंकि तीसरा शैतान है ना, बेटा बुरा ना बेटी बुरी, शैतान अच्छा नहीं है ना, देवर बुरा ना भाभी बुरी, लेकिन शैतान अच्छा नहीं है ना, जेठ के बच्चे ना ताया के। तो हमेशा याद रखिए कि जिस तरह भी आप कर सकें उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। बस हालात ऐसे हैं। अब यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है जो मिसाल है कि प्रैक्टिकली आप मेरी इस बात को समझ सकते हैं। बहुत छोटे घर है ना ऐसे घर। अब आप देखिए कि बाज़ दफ़ा शेयरिंग ही इतनी है। अब आपने किसी का एक कमरा घर में लिया किराए में, दूसरे कमरे में हो सकता है कोई और हो, फिर क्या करें? कोई बात नहीं, वो आपका घर, वो आपका घर है। आप दूसरे के कमरे में नहीं जाते, वो दूसरे के कमरे में नहीं जाता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिला झिझक और हर वक्त एक दूसरे के सर पे सवार रहे। घर क्या होता है? जिसके ऊपर आपका कब्जा है, जिधर आपका कंट्रोल है। तो वरना तो आप देखिए कि आपका जीना मरना ही जिंदगी में मुश्किल हो जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा शैतान हमारे दिलों में किस किस्म के वसवसे डालता है, हमें नहीं पता होता कि बाहर बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह सबको बचा के रखे। लेकिन आप देखिए, मैंने एक इतना खतरनाक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत दफ़ा ईमेल में लोगों ने भेजा और खौफ आता है कि कहाँ, यानी बाहर एक औरत जाती थी, लड़की थी यंग, तो बीच में कुछ अंधेरी जगह आती थी और उस अंधेरी जगह में किसी मर्द ने उसको किडनैप किया, और वो मतलब लंबी चौड़ी कहानी थी। सबसे पहले हम वही बात है कि अपने दिल में अल्लाह का खौफ भी रखें, सुबह शाम की दुआएं अपनी बच्चियों को, आप सब भी भेजते ही होंगे ना, मुझे यकीन है कि मुसलमान माँ खुद चाहे वो नमाज भी ना पढ़े, लेकिन अपने बच्चों बच्चियों के मामले में वो बहुत क्यूरियस होती है, सच बात है। फिर भी आप उनको पूरे प्रिकॉशंस दे के भेजें। वक्त अच्छा नहीं, हालात अच्छे नहीं, और ना चाहते हुए भी फिर दिल वैसे करता है। मैं तो सोचती हूँ कि उम्र के साथ जो ही कुछ जज्बे उभरते हैं शादियां करते हैं, फितरी हो बात है। देखिए जैसे आप सोचते हैं ना कि एक बच्चा है तो जरा सा 3 साल का होगा ना तो वो फिर गुड़िया के साथ खेलने लगती है बच्चियां, हम समझते हैं इसको अब एक बेबी चाहिए, होता है ना, बेबीज को बेबीज चाहिए होते हैं। जवान बच्चों को बेटियों को चाहिए रिश्ते, उनको चाहिए मर्द। अब वो मर्द नहीं है तो फिर वो बेचारियां बाप से कहेंगी कि हमें ले जाओ, भाई को कहेंगी हमें ले जाओ। यानी ये फितरत के खामोश इशारे, इनसे कभी भी मफर ना करें। आपका बेटा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा बेटा है कि अगर वो किसी लड़की को साथ घर में नहीं लिया था, लेकिन उसकी इस वक्त ख्वाहिश है कि वो कहीं फिरें, कहीं घूमें, कहीं खाएं। तो लिहाजा इस दौर में ये बहुत ज्यादा एक मुझे लगता है कि निगलेक्टेड थिंग है कि बाहर सोने चांदी के बच्चे हमारे होते हैं, हीरों मोतियों की कड़ियां, और बास लोगों के तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे। और यकीनन मजबूरियों में लोग भेजते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं बच्चे बच्चियां, हॉस्टल्स में होते हैं, अकेली आती हैं बच्चियां, अकेली जाती हैं। मेरे पास ऐसी बीसियों मिसालें, ड्राइव करके आती हैं, तीन तीन चार चार घंटे की ड्राइव से लड़कियां आती हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो घर में इंसान सिक्योर होता है, अल्लाह ने ऐसी पाबंदी नहीं रखी कि अब घर में भी तुम हर वक्त गन पॉइंट पे रहो कि तुम भाई किधर है, बहन किधर है। भाई को पता है बहन की क्या लिमिट्स है, लेकिन लिमिट्स रखो। इसलिए मैंने तो जो चंद बातें लोगों की सुनी हुई, अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करे, और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे, मतलब जिसको आप कहना चाहिए कि शरीफ शरीफा के घरों में ऐसे हालात हों। लेकिन आपको पता है कि शैतान हदीस की रिवायत में कि सगे रिश्तों में भी जिना करवा देगा, महरम रिश्तों में। यानी एक बच्ची अपने भाई की हविस का निशाना बनती थी जब भाई हॉस्टल से रात घर आता था। सोचिए वो कितना खराब था कि वो एक दो दिन नहीं रह सकता, और बहन को गन पॉइंट पे वो किडनैप करता था कि अगर तुमने किसी को बताया तो क्या। अगर वो बच्ची जहनी मरीज बन गई, मैं उसको बहुत करीब से जानती हूँ, यानी जब उसकी शादी हुई तो वो जहनी मरीज थी, क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकती ये बातें। तो हमेशा हालात को अच्छा रखें, हमेशा अपनी जिंदगी में बच्चों के दिलों में तकवा, ईमान, और ऐसा हम अब सबने अपने अपने बच्चों को बनाएं कि शैतान उनसे डरे। वरना मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि आप अकेले भी अपने कमरे में महफूज नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? अकेला बंदा भी महफूज नहीं है। अगर आप यंग बच्ची हैं या आप अगर बड़ी खवातीन हैं, कोशिश करें अगर बच्ची है ना तो माँ के साथ ही आ जाए, या कम अज कम आना जाना लगा रहे, क्योंकि हमेशा अपने आप को सिक्योर रखें। शैतान इस तरह भेस बदल के आता है। बीबी मरियम एक फरिश्ते को आता दे के कहती है कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ, और आज क्रिश्चियनिटी बुलाती है इन चीज़ों पर। इसके ऊपर क्या कहेंगे ये, जिस तरह आज हम नबी सल्लम की नातें तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी सुन्नतों पे अमल नहीं करते। इसी तरह आप देखिए आज लव मैरिज, मैरी क्रिसमस अफला, लेकिन आज बीबी मरियम जैसा कोई भी नहीं। आप एक चीज नोट करके देखें, जहां बीबी मरियम की तस्वीर दिखाते हैं कैसी दिखाते हैं, सर से पांव तक हिजाब, कोई उनका हिस्सा जिस्म का दिखता है? क्या आज की लड़कियां मैरी की तरह के कपड़े पहनती हैं उनकी? कितना फर्क। ये वजह कि कौमों के अंदर जवाल आता है। आज हम बीबी फातिमा का नाम तो रख लेते हैं अपनी बच्चियों का, फातिमा कितना प्यारा नाम है। क्या हमारी बेटियां फातिमा जैसी होती कि जो कहा करती थी कि मेरा जनाजा रात को उठाना कि लोगों को मेरे जिस्म के उभार ना दिखे। एक मौके पे अपनी दोस्त को कहती हैं कि मुझे इसका बड़ा गम है कि जब लोग मरने वाली औरत के ऊपर चादर डाल देते हैं तो पता चल जाता है कि औरत का फिगर कैसा है। तो दोस्त ने कहा मैं हबशा गई थी तो मैंने देखा कि जब कोई औरत मरती है ना तो उसकी चादर के किनारों पे पहले स्टिक्स लगाते हैं, जैसे इतनी इतनी छोटी सी लगाते हैं, सीधी स्टिक्स लगा के फिर उसके ऊपर चादर डाल देते हैं, पता नहीं चलता अंदर औरत है मर्द है, मोटी है पतली है। तो कहने लगी मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि अगर मैं मर गई तो तुम मेरे साथ ऐसा ही मामला करना। कितनी हयाती, हमारे हाल हुलिये, हमारे तौर तरीके, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि मैं तो और किसी को नहीं कह सकती लेकिन ये जो आप छोटे बच्चे बैठे हैं इनको तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अब आप हिजाब पहनते हैं ना, और मुझे यकीन है कि आप बाहर भी पहनते हैं, अगर यूनिफॉर्म का हिस्सा समझ के नहीं पहनते, अपने लिबास को भी ढीला करें। अगर आपके जिस्म पे चुस्त कपड़े और सर पे हिजाब है, ये एक और किस्म का मजाक है। कैन यू बिलीव, इतना लोग हमारा इस पे मजाक उड़ाते हैं, मैं इस जगह बैठ के वो आपको बता नहीं सकती जो मुझे किसी ने मुस्लिम्स के नाम पे एक ऐसी चीज भेजी थी कि व्हाट डज इट मीन, कि सर पे हिजाब है और नीचे हो सकता है सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहने हो। कैन यू बिलीव? तो हमेशा अपने इस्लाम पे खुश हो, ठीले ढाले। ठीक है हम बाहर जाना पड़ता है मजबूरी, सर से पांव तक देखें मेरे में कोई अट्रैक्शन तो नहीं, चलते फिरते बोलते मेरा जिस्म, मेरा हाथ, मेरा कुछ, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे ही मेरे ऊपर नजर डाले। मैं कहती हूँ बाहर निकल जाओ ना तो लोग हमें देखे के बस ऐसे हैं, तो फिर हम सिक्योर हैं। वरना तो आप देखें किसी को हमारी आंखें अच्छी लग सकती हैं तो किसी को हमारा क्या कुछ नहीं अच्छा लग सकता। तो जब दिल में ईमान आता है तो बीबी मरियम जैसे बनना है। और आप सूरत दहरी में पढ़ेंगे कि बीबी मरियम अनमेरिड लड़कियों के लिए रोल मॉडल है, और वो क्या औरत है लड़की है जिसने शादी से पहले अपनी इज्जत खराब कर ली, वो तो एक खयानत हो गई ना। तो हमेशा इस चीज पे अपने आप को देखें कि मैंने इस वक्त के माहौल से कैसे अपोजिट जाना है। लोग क्या करते हैं, मत देखिए ट्रेंड्स क्या है, मत देखिए कैट वॉक क्या कह रही है, और आप मत देखिए कि स्टाइल्स क्या चल रहे हैं। अंदर घर में अपने हिसाब से कभी अच्छा लगे कर ले जो करना है, पहने ओढ़े, लेकिन बाहर आपका गेटअप बिल्कुल फकीरों वाला होना चाहिए, मस्कीनों वाला, ऐसा लगे कि इस मच्छी में कोई इस तरह के जज्बे नहीं है, फिर आप फायदा। वरना आप अगर आप मुस्लिम स्टाइल्स आम करके बाहर फिरने लग जाते हैं तो फर्क तो कुछ पड़ता ही है, ऑफ कोर्स पड़ता है, लेकिन बहरहाल बात पूरी नहीं होती। तो हजरत मरियम के इस अमल पे बात लंबी हुई, लेकिन इसकी जरूरत थी। दूसरी बात, अब यहाँ देखिएगा, रसूलन इला बनी इसराइल, वो रसूल थे बनी इसराइल की तरफ। यहाँ अब जरूरत है कि अगली आयतों से पहले मैं आपको रसूल और नबी का फर्क बताऊं, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा कानून अप्लाई होता है। पीछे आप देखिए कि हजरत यहया की विलादत की जब खुशखबरी मिली तो क्या कहा गया था हजरत जकरिया को, कि वो क्या होंगे, नबी यम मिन सालेहीन, वो नबी होंगे सालेहीन के। इधर क्या कह दिया, रसूल अनिला बनी इसराइल। तो हजरत याह्या नबी थे, और आपको शायद अभी नहीं पता, आगे जाके कहीं जिक्र होगा, हजरत याह्या को यहूद ने कत्ल करवा दिया था। भला क्यों? एक बादशाह ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी अपनी माशूका को खुश करने के लिए हजरत याह्या का सर काट के उसको पेश किया था। जब वो करप्शन और गंदे कामों में इन्वॉल्व थे, हजरत याह्या मना करते थे, उस औरत ने कहा मुझे तो ये शख्स अच्छा ही नहीं लगता, फिर मैं तो तुम्हारी बात तब मानूंगी जब तुम इसको जिबा करोगे और इसका सर मेरे सामने लाओगे। तो उन्होंने इतनी दुआओं से मांगे हुए याह्या का सर काट के उनको पेश कर दिया। अल्लाह ताला का कानून लिखिए, ये बड़ी अहम बातें हैं जो आपको इस्लाम का मिजाज समझाएंगी। एक होता है रसूल, एक होता है नबी, फर्क क्या है, पहले जिक्र किया हुआ लेकिन आज थोड़ी डिटेल से बता देती हूँ। देखिए, हर नबी रसूल नहीं होता, हर रसूल नबी होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप कहें कि हर पाकिस्तानी पंजाबी नहीं होता, लेकिन हर पंजाबी पाकिस्तानी होता है, ठीक है, ये बात है। रसूल को नई किताब मिलती है, बराह रास्त अल्लाह ताला उसके दिल पे नाजिल करता है किताब को, जैसे कि अंबिया कराम के साथ हुआ, नबियों के साथ हुआ। नबी कौन होता है, जो पिछले ही रसूल की किताब की तबलीग करता है, ठीक है। अगली बात क्या है, नबी लोगों के हाथों कत्ल हो सकते हैं, रसूल नहीं होते। इतने रसूल और नबी आए, उनमें एक मिसाल भी ऐसी नहीं है कि लोगों ने रसूल को कत्ल कर दिया हो। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे, यहूद ने उनके कत्ल की कोशिश की तो कत्ल हो गए। आगे अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि रसूल थे, तो रसूलों के बारे में अल्लाह का फैसला है कि रसूल लोगों के हाथों से नहीं मरेंगे, लिहाजा जब उन्होंने उनको मारने की कोशिश की क्या हुआ, वो आज के सबक के आखिर में आएगा। लेकिन यहाँ इतनी बात काफ़ी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम रिसालत का मुकाम था। इन्नी कद जीतुकुम बी आयतिम मिन रब्बिकुम, हजरत मसीह ने बनी इसराइल को दावत दी कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। ये कौन सी निशानी लेकर आए थे, इनकी पैदाइश निशानी थी, बिन बाप के पैदा होना निशानी थी, आप देखिए कि इनका बचपन में बोलना निशानी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना तआला ने बहुत सारी निशानियां दी थी। फिर आप देखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ऐसे ऐसे कई काम किए थे कि जो दूसरे लोगों में नहीं थे, मौजजात थे इनके पास, बीमार को ठीक कर देते, अंधे को ठीक कर देते, और इनकी पैदाइश सब कुछ ही निशानी थी, यानी इनका अपना वजूद ही निशानी था। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि हजरत ईसा अपनी जुबान से ये बात कह रहे हैं कि देखो लोगों, मैं तुम्हारे पास निशानियां लेकर आया हूँ, बल्कि मैं खुद भी निशानी हूँ। और जहन में रखिएगा कि ये सब कुछ हजरत मरियम को भी बताया जा रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये सारा मंजर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बातें चलती गईं, और साथ ही बीच में फरमाया अगला मौजज़ा, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीनि कहैयति तौईर, कि मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की मानिंद सूरत बनाता हूँ। मट्टी का परिंदा बना के उसमें फूकते थे, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम ही यह है कि रूहें फूकना, तो वो फूक में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फूक शामिल हो जाती थी और वो परिंदा जिंदा हो जाता था। फनफुहु फीही फयकूनु तैरम बिस्मिल्लाह, फिर मैं इसमें फूक मारता हूँ तो वो बन जाता है उड़ता हुआ परिंदा अल्लाह के हुक्म से। अब आप देखिए हर मौजजे के बाद बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, हाँ मेरा कोई दावा नहीं, अल्लाह की इजाजत से करता था, मेरा ये कमाल नहीं। वह उबरी लकमहा, और मैं शिफा दे देता हूँ मादरजाद अंधे को। अकमहा क्या है? बोन ब्लाइंड, वो बच्चा जो पैदाइशी तौर पे नाबीना हो। और आज भी आप देखिए कि जिन बच्चों को पैदाइशी तौर पे आंखों का कोई मर्ज होता है फिर वो ठीक नहीं होते, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उनको ठीक कर देते थे। वल अबरसा, और बर्स के मरीज को, बर्स क्या है? स्किन डिजीज है। अमूमन आप देखेंगे कि किताबों में इसका नाम कोड़ी आता है, कोड़। कोड़ को जुजाम कहते हैं अरबी में, लेप्रसी जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं। यहाँ लफ्ज अबरस है। अबरस वो चीज़ है जिसमें आपने कभी किसी को देखा कि स्किन में सफ़ेद कलर के निशान पड़ जाते हैं, जैसे पिगमेंटेशन का स्किन में कुछ इस किस्म की बिगड़ती है कि स्टेन्स आ जाते हैं, यानी स्किन डिजीज जिनको होती थी, तो ये हाथ फेरते थे तो ठीक होता था। वह हिल मऊता, और मैं जिंदा करता हूँ मर्दों को भी इसने अल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वह उनब्बियुकुम बिमा ताकुलून, और मैं तुमको खबर देता हूँ उस चीज़ की जो तुम खा के आए हो। यानी यहाँ बैठे बैठे हमें सुख बता सकते हम क्या खा के आए हैं? नहीं बता सकते ना। हजरत ईसा को पता चल जाता था। वमा तदखिरून, और तुम घरों में क्या जखीरा करके आए हो, फ्रिज और फ्रीजर में क्या भर के आए हो, शाम के लिए क्या निकाल के आए हो, हजरत ईसा को पता। अब लफ्ज़ देखिए तदखिरून क्या रूट होगा इसका? जी जाल हारा, असल लफ्ज वही है जिसको उर्दू में जखीरा कहते हैं। अरबी जुबान का असूल है कि जब दो जाल देखे ना, तदखिरून, अब तजहिरून होना था ना, शब्द उस पर शद लगी, तो दो जाल मिलते हैं ना तो उसकी आवाज दाल की हो जाती है। बात बात पढ़ना मुश्किल था ना वो, अगर आप पढ़ के तो देखिए जरा, तज यानी जा जा मिलके दाल की आवाज बनती है, और जो करीबुल मखरज लफ्ज होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ दाल खारा नहीं जाल खारा है, ठीक है। तुम जखीरा करते हो, फी बुयूतिकुम अपने घरों में, इन नफी ज़ालिकलाया, बेशक इसमें निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम ईमान लाने वाले हो। यानी सारे मौजज़ात सारी चीज़ें बताकर अपनी रसालत की सदाकत और उसकी दलील के तौर पर कहा कि अब तुम इसको मान जाओ, तुम्हारे लिए इसमें फ़ायदा है। अब आप देखिए कि ये जो मौजज़ात हजरत ईसा को मिले ये किस किस्म के मौजज़ात थे, तो समझ लीजिए कि उस दौर में तिब का दौर था, मेडिसिन बड़ी अरूज पे थी और लोगों को अपनी इन कोशिशों पे बड़ा मान था। इनके सारे मौजज़ात जो थे वो तिब्बी किस्म के थे। जिस तरह हजरत मूसा के दौर में जादू का जोर था, मैजिक, तो उनको जो भी चीज़ें मिली वो जादू की तरह की लगती थी। तो यहाँ बिल्कुल ये चीज़ पता चलती है, और यहाँ हमारे लिए एक निशानी है, कमल की बात है कि जिस दौर में आप बात कर रहे हैं ना उसी तरह की मिसालें दें। जैसे आज साइंटिफिक दौर है ना, तो लोगों को अगर आप इस्लाम का मिजाज देंगे तो साइंटिफिक एग्जांपल्स दें। इसी तरह अगर आप किसी ओपन एयर में चले जाते हैं जहाँ की बहुत ही नेचर है, तो लोगों को कायनात से मिसालें दें। हमेशा मुखालिफ का जहन पढ़ना चाहिए कि उस वक़्त इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और ये इस वक्त किस बात को सुनने के लिए तैयार है। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला लोगों को मरूब भी तो करना चाहते हैं ना। मौजज़ा किसको कहते हैं बाय द वे? क्या रूट होगा मौजज़े का? एज्ज, आइन, जीम, ज़ा। मौजज़ा कहते हैं वो चीज़ जिसको समझने से अकल आजिज आ जाए। आई कैंट अंडरस्टैंड, पता नहीं कैसे हो गया, कभी भी रस्सी तो सांप नहीं बनी, ये सांप कैसे बन गई? तो अकल आजिज हो जाती है ऐसे वक्तों पे जब ऐसी चीज़ों को सामने रखा जाता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये सारी चीज़ें जो थी वो बता दी गई, और अब इसके बाद हज़रत ईसा का मिशन बताया गया। देखिए हर नबी को जो चीज़ें मिलती हैं ना उसके पीछे कुछ हिकमतें होती हैं। आयत नंबर 50, व मुसद्दिक लिमा बैना यदय मिनत तौरा, और मैं तस्दीक करते हुए आया हूँ इसकी जो मेरे सामने मौजूद है तौरात में। बात वाज़ह है, यानी मैं तौरात को कंडेम नहीं कर रहा बल्कि मैं तौरात को वेरीफाई कर रहा हूँ। وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, और इसलिए भी आया हूँ ताकि मैं हलाल ठहरा दूँ तुम पर इन में से बाज़ चीज़ें जो तुम पर हराम कर दी गईं। ये है यहूद की हज़रत ईसा से दुश्मनी की दलील, इसको समझिएगा तो फिर अगली आयतें ज़रा आसान हो जाएंगी। देखिए अल्लाह ताला ने यहूद को दीन दिया ना, और तौरात में बड़ी चीज़ें मुनासिब तरीके की थी, बहुत अच्छी तरह की थी, हो गई ख़त्म हो गई बात सारी की सारी। यहूद के उलमा ने अपनी मर्जी की तावीलात कर ली थी, पीछे हम पढ़ते आए फतवे इज्तहादात, ये कर लो तो ये ना करो, इसका ये, उसका यो, दिस एंड दैट। अब ये सारी वो चीजें थी जिसकी वजह से दीन बड़ा मुश्किल हो गया था, ठीक है। इसी में लोगों के ऊपर इतना तशद्दुद बरता जाता था कि ऐसे लगता था कि दीन पे अमल आम लोगों के तो बस की बात ही नहीं है। चंद मजहबी लोग, चंद शहर की शख्सियात, मारूफ लोग वो दीन पे अमल कर सकते हैं और बाकी नहीं कर सकते। अब जब ये कॉन्सेप्ट होता है तो होता क्या है, आम लोगों को खुली छुट्टी मिल जाती है, करते वो हर बात अपनी मर्जी की है, और फिर कहते हैं जी हम तो गुनाहगार हैं, ये नेक लोगों की, उनकी क्या बात, वो तो इमाम साहब है और वो तो जी आलिम है और वो फलां है, और वो लोग फिर दीन से और दूर हो जाते हैं। ऐसे ही होगा ना। मिसाल दे देती हूँ आपको, देखिए कि आपको पता नहीं कितना मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ आपको जितना भी काम, होमवर्क, टेस्ट, टाइम दिए जाते हैं, वो आप में से 80% लोगों की तो फिजिबिलिटी में होता ही है ना, राइट। इतना पढ़ लो, इतना याद कर लो, कर लो। और अगर इसको छोड़कर हम आपको ये कह दें कि आपका कल 5 बारों का टेस्ट है, या जो आपको नहीं पढ़ाया उसका भी टेस्ट है, या चलो भाई जितना पढ़ा हुआ है कल उस सारे का टेस्ट है, तो हो सकता है आप में से 5 लोग दे दें, 95 तो नहीं देंगे ना, राइट। तो जब एक हार्ड लोगों को टारगेट दिया जाता है ना, तो कम हिम्मत वाले और हिम्मत तोड़ देते हैं। हजरत ईसा अलैहि सलाम जिस दौर में बनी इसराइल में आए, यही हो चुका था। आमतुन नास दीन से बिल्कुल दूर थी, और दीन पर चंद मशायख और उलमा और दर्स वाले और मौलवी हजरात का कब्जा था। कोई मरता था तो मौलवी साहब के पास लोग आएंगे, कोई शादी करानी है तो मौलवी साहब के पास जाएंगे, कोई पैदा हो गया तो बच्चे के कान में अजान मौलवी साहब दिला दें। अब नतीजा क्या कि मौलवी साहब और दीन वालों को तो बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा था, हलवे मांडे खाना पीना साथ साथ चलता है हर दर्स में, कौन छोड़े। जब आम लोगों को ये सारी बातें पता चल जाएंगी जो कि बड़ों को पता थी, तो वो तो आम हो जाएंगे, फिर हो सकता है किसी मौके पे मौलवी साहब के बगैर भी गुजारा हो जाए। ये चीज यहूद के उलमा को पसंद नहीं थी। हजरत ईसा अलैहि सलाम की नबूवत के मकासद में से एक मकसद क्या था कि जो दीनदार तबके ने जबरदस्ती तौर पे एक इजारादारी कायम कर ली है, इजारादारी मिनोपली को कहते हैं, यानी हमारा ही होल्ड है, बस कह दिया ना मान जाओ, इसको तोड़ना था। आम लोगों की अप्रोच पे दीन ले आओ। जब हजरत ईसा ने दीन को उसके असल शक्ल पे पेश किया, तो उस दौर के जो उलमा थे, चले यहूद थे, जो उन्होंने हजरत ईसा पे भला क्या इल्जाम लगाया, मुलहिद, समझते मुलहिद कौन, इल्हाद करने लगा, कहते थे ये दीन को आसान कर रहा है, ये लोगों को बड़ा आसान दीन दे रहा है। ये बिल्कुल वही इल्जाम है जो आज कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों पे लगता है, खास शिद्दत पसंद मजहबी रहनुमाओं की तरफ से। बाज़ुकात वो बेचारे एक जुमला बोलते हैं, लोग उसमें 6 जुमले बुला के आगे और ला के पेश करते हैं। मैंने खुद लोगों से सुना है, फला हाँ जी उनके पास लोग क्यों ना आए, इतना तो आसान दीन है उन्होंने कर दिया। वो कहते हैं कपड़े भी अच्छे पहन सकते हैं, वो कहते हैं आप मेकअप भी कर सकते हैं, और वो कहते हैं जो मर्जी खा लो कोई हर्ज नहीं, बस गलत है। वो कहते हैं दुपट्टा सर से उतर भी जाए कोई बात नहीं, वजू फिर भी रहता है। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, खड़े होकर भी वजू कर लो। देखा, इसीलिए तो लोग उधर जाते हैं। ये बातें आपने सुनी हुई लोगों से? वो कहते हैं नहीं दुपट्टा सर से उतर गया तो तुम्हारा वजू टूट जाएगा, बाथरूम में जाने से पहले भी सर पे दुपट्टा लो, बैठ के वजू करो, मिट्टी के लोटे से करो, साबुन नहीं यूज करो, क्योंकि अल्लाह के नबी नहीं करते थे। अब आप सोचिए कि जब आप 4-6 लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी डिवोट कर दी है, वाकई मिसाल है, आप मेरे ऊपर ले लें, मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी तबलीग के नाम पे डिवोट है, मैं कर लूंगी, मेरे पास इतनी लाइबिलिटीज ही नहीं है। लेकिन ये एक इस्तिस्नाई सूरत तो आप रख सकते हैं, लेकिन हर बंदा उस दर्जे पे नहीं पहुंच सकता जिस पे मैं पहुंच सकती हूँ, लोगों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, राइट। तो अल्लाह ने सिर्फ थोड़े से लोगों को नहीं जन्नत में भेजा, ये भी याद रखिए। बाज दफा दीनदारों में जब सख्ती आती है ना, तो वो इतने रिजिड हो जाते हैं कि उनका दिल करता है सिर्फ बस हम 5-6 जाएंगे। वो आपको एक मैंने सुनाई भी थी ना बात, किसी ने आपको ही सुनाई होगी, कि दो एक ही मसलक के आलिम बातें कर रहे थे आपस में कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। हाँ फला नहीं, उसका तो ये फिरका है, नाम लेते थे मुझे जरूरत नहीं, फला नहीं, उनमें तो ये खराबी है। 7-6 फिरकों को उन्होंने डिस्कस किया, तो कहने लगे वो भी नहीं जाएगा, उनके अकायद में ये खराबी, उनमें ये, इसमें ये। कहने लगा पीछे रह गया तू और मैं, तेरी तो मुझे नियत पे शक है, तेरी सोच ठीक है लेकिन नियत का खराब है, तो मेरा ख्याल है मैं ही जाऊंगा जन्नत में, तेरी देखिए ये सोच जब आती है ना, तो फिर अल्लाह ऐसे दौर में मुजद्दीन को भेजता है। आपने मुजद्दद अल्फ सानी का नाम सुना हुआ? कोई बुजुर्ग गुजरे हैं तारीफ में, अल्फ कहते हैं हजार को, सानी दूसरा। एक रिवायत मिलती है कि हर 100 साल के बाद अल्लाह एक ऐसे मुजद्दद को, एक ऐसे शख्स को दुनिया में भेजते हैं कि जो दीन में किए हुए इजाफे, कमियां, बेशियों को दूर करके फिर नबी की हदीसों को खोल के ले आता है। ये सही हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस है, ये जायज़, ये सही, ये कुरान की आयतें ऐसी थी। यानी लोगों ने जो अपनी मर्जी से जोश की बातें, इंतकाम की बातें, जज्बाती की होती है, वो सब छांट छूट के ना दीन को प्योर फॉर्म में ले आया जाता है। फिर आम लोगों को फिर लगता है, आज जो हमारी सदी चल रही है ना, ये इस दौर की चल रही है। ये जो आपको फिर सांस लेती हुई दिख रही है ना उम्मत, थोड़ी सी आपको हिलचल मिल रही है, जंग्स में ये बातें आ रही हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इस सदी में ऐसे ऐसे लोग उठाए हैं माशाल्लाह, कि जिन्होंने अब दीन को खोल के दिखा दिया। कि देखिए सीधी सी बात है कि लोग जब नमाज नहीं पढ़ते तो क्या वो हर चीज छोड़ देंगे? जिसकी इजाजत तो है लेकिन मुहासबे का फिक्र है, नहीं छोड़ेंगे ना। चलो भाई तुम जो करते हो करो, साथ नमाज तो शुरू कर दो, ये तरीका कार है ना। एक शख्स नया मुसलमान हुआ, आप क्या कहते हैं कि वो इमाम काबा बन जाए? हम रियायत ही नहीं कर पाते लोगों की, सर पे सवार हो जाते हैं, नहीं कर सकते आप। एक नशे का आदी है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो आधे घंटे में बिल्कुल नशा छोड़ छाड़ के बिल्कुल आप जमजम का आदी हो जाए? इंसानी फितरत की रियायत करते हुए अल्लाह ताला हिसाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उस दौर के मजहबी उलमा की तरफ से ये इल्जाम लगा कि ये दीन को आसान कर रहा है। इसी वजह से आगे आप पढ़ेंगे, अभी लिखाऊंगी उधर, कि क्यों हजरत ईसा को कत्ल करना चाहा था। आपका क्या ख्याल है, वो मजहबी लोग हजरत ईसा को कत्ल करने को गुनाह समझ के कर रहे थे? कहते थे मारो इसको, ये मुलहद है, ये लोगों के अकीदे बिगाड़ रहा है, ये औरतों को उभार रहा है, ये औरतों की बातें करता है, ये उनको लोगों के हकूक दे रहा है, ये पैसे वालों को सहूलत दे रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि आज के दौर का भी जिहाद चाहिए, इमोशन से पाक, स्पार्ट लहजे में फिगर्स एंड फैक्ट सामने रख दो लोगों के, ये फर्ज है। ये ना करो तो इट्स फाइन। मिसाल देती हूँ, सिर्फ छोटी सी मिसाल, इस वक्त इस पर सवाल ना कीजिएगा। नमाज का मसला, आज हमारे यहाँ नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, दो सुन्नत दो फर्ज, चार सुन्नत चार फर्ज, दो सुन्नत दो नफिल, फिर चार फर्ज, शायद कुछ लोग उसके साथ चार सुन्नत भी पढ़ते हैं, फिर मगरिब तीन फर्ज, दो सुन्नत दो नफिल, और ईशा चार सुन्नत चार फर्ज, दो सुन्नत दो नफिल, तीन वितर और दो नफिल, ये पढ़ते हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि ये जितनी रखते हैं आपने बनाई, ये किसकी बनाई हुई है? अल्लाह ने तो इसमें आपको दो फर्ज फजर के, चार फर्ज जोहर के, चार असर के, तीन मगरिब के और चार फर्ज आपको अल्लाह ने उसके दिए, ठीक है? ये है वो जो लाजिम है, नहीं करेंगे तो पकड़ है, पकड़े जाएंगे। सुन्नतें, 12 सुन्नतें नबी सल्लम की ऐसी हैं कि जिसके ऊपर खुशखबरी है, कभी नहीं छोड़ी, और जो पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में महल है, वो सुन्नत है। आपके ये नफिल कहाँ से आ गए? ये तीन वितर और उसके बाद के दो नफिल कहाँ से आ गए? ये पसंदीदा काम थे, पढ़े, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ता गुनाह नहीं। आप कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ रही, साथ सर पे खड़ी हैं और आप सब सजदे पे सजदा दे रहे हैं, सजदे पे सजदा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने 7 रकत पढ़नी है, चावल उबल रहे हैं, लेकिन आपको तीन फर्ज दो सुन्नत दो नफिल पढ़ने, और नफिल पढ़ने भी बैठ के सारा दिन बाजारों में फिरेंगे, नफिल के वक्त में बैठते हैं, किसी नफिल तो बैठ के ही पढ़े जाते हैं, ये कहाँ का दीन है? अब आज आप इसको जरा निकलेंगे, जब आपको नमाज नबी पढ़ाएंगे तो लोगों ने कहना देखा ये वहाबी बना रहे हैं आपको। अल्लाह के बंदो, फर्क सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये फर्ज है। अब यहाँ हम फर्ज पढ़ते हैं ना सारे, अगर आप सबको इजाजत दीजिए कि नहीं आप सारे पूरी 12 रकत नमाज जोहर पढ़ें, और हम सबकी स्पीड भी फर्क है, मुझे सच बताइए कि आपकी ब्रेक कितनी लंबी हो जाए। तो अगर कहा जा रहा है आप उधर फर्ज पढ़ते हैं, आके इधर मैंने नहीं खाना खाना, मैं इधर नफिल पढ़ लूंगी, आपको ब्रेक नहीं लेनी, आपकी मर्जी है, आप बाद में पढ़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाल ये कि दीन में जब चीजें यूं, ये मेरी तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से, ये उलमा का फैसला, ये तकवे की बात, ये फतवे की बात, तो वो लोग कहते हैं हम पढ़ते ही नहीं। कई माएं कहती हैं बच्चे नमाज इशा की नहीं पढ़ते क्योंकि 17 रकत बहुत लंबी लगती, बात समझते ना। तो जब दीन में ये होता है ना, तो वली उहिल्ल लकुम बात अल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, कि तुम पे मैं वो चीजें हलाल करता हूँ जो तुम पे हराम थी। मसा आप देखिए वेजिटेरियन लोग, हम कल किसी की बात कर रहे थे कि वो गोश्त नहीं खाते घर, व्हाट डज इट मीन, लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने हलाल रखी? ये उनका मिथ है कि हमें मीट नहीं खाना। हम कहते हैं अगर हम उनको मीट खिला देते हैं तो कोई गुनाह की बात नहीं है। वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह ने हलाल किया, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि असल दीन रखेंगे ना सामने तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। आज भी अगर आज माशाल्लाह ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है 20-25-30 साल पिछले से, कि मुसलमानों को ऐसे उलमा ने कहा चलो फर्ज पे तो चलो थोड़ा सा ये तो करो। पर्दे के नाम पे आप देखिए कि हमारे यहाँ मारूफ की गई बातें किस तरह की बातें हैं कि सर का बाल जो है वो कोई देख ही नहीं सकता, खुले आसमान के नीचे औरत का बाल नहीं दिखना चाहिए, इस तरह की मिथ मशहूर हुई। औरतों ने कहा छोड़ो हम तो कुछ नहीं करते, दुपट्टे भी उतार के रख दिए। नुकसान हुआ ना। तबलीग का मतलब क्या होता है कि लोगों तक बात पहुंच जाए, ये नहीं कि चिड़ में वो जो करते थे वो भी छोड़ दें, ठीक है। तो मिजाज जिनका बिगड़ा होता है उनको तो ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, जो हमारा इतना फितरी दीन है जिसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअ, तो आप कहते हैं चलो ये तो कर लो, बाकी बातें बाद की बात है। लेकिन बस वही बात है कि फिर हम कहते हैं वो देखा अरबों को, देखा तुमने कैसे अंदर घर उनके कैसे हैं, कैसी फैशनेबल है। किसी ने ऐसी मिसाल दी कि आपको बताइए सऊदी अरब के अंदर घरों में क्या होता है, तो भाई आपको और मुझे क्या जरूरत है देखने की। वो अपनी बीवी है, वो अपने मर्दों के लिए पहनती है, उनके घरों में इतना पर्दा है। अब अगर वो औरतों के अंदर अपने सतर का नहीं ख्याल करती ये उनका इशू है, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिए आप और मैं हमारे देखिए हम मुसलमान हैं, हमारे मर्द बाहर क्या कुछ देखते हैं। तो अगर आप घर में गंदे मंदे फिर रहे हैं और आपका शोहर आपको देखता है और वो बाहर की औरत के मुकाबले में आपको फोकट औरत कहता है, तो इसकी निस्बत अगर अगर आप घर में अपने शोहर के लिए वो सारे कपड़े पहन लें जो आपको शौक है, जिसके पास वेस्टर्न कपड़े हैं संभाल दें, अकेले में अपने शोहर के दिखा दे, अकेली औरत भी नहीं पहन सकती, क्योंकि जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे जज्बे उभरते हैं, इश्तिहा फैलती है। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं फिर शोहर बीवी के ताल्लुक में आप देखिए आज हमारे दौर में कितनी मिसकॉन्सेप्शंस है, जरूरत तो बात की नहीं है इधर। लेकिन ये दीन का डिक्लाइन होता है जब लोग अल्लाह के दिए हुए फर्ज और अपने किए हुए फर्ज को एक लाइन में कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा से ये काम लिया और ये काम है बड़ा मुश्किल, इसलिए लोग दुश्मन हो गए। और आगे आप पढ़ेंगे कि हजरत ईसा को कत्ल करने की सोच दी कि ये क्या कर रहे दीन के नाम पे, पकड़ो इनको। फत्तकुल्लाह वातीउन, बस अल्लाह से डर जाओ और मेरी इताअत करो, मेरी इताअत करो। आप देखिए कि इसकी मिसाल समझें, उनकी मिसाल है कि हफ्ते के दिन में यहूद को काम करना मना था, जो आज छोटा करके बिल्कुल इतना सा करके हमारी नमाज जुमा के शुरू होने से लेके खत्म होने को कर दिया ना, उस वक्त में आज मुसलमान मर्द भी काम नहीं कर सकते, हराम होगी अगर उस वक्त में वो कोई कमाई करते हैं और नमाज छोड़ते हैं। अब उनको क्या था कि ना करो, यहूद के उलमा में सख्ती पैदा हुई, मजहबी मिजाज जो रिलीजियस लोग थे उन्होंने कहा काम किसको कहते हैं, बैठ के उनके उलमा के बीच में इस बात पे मुनाजरे मुबाजे होते कि जब हफ्ते के दिन हम काम नहीं कर सकते तो काम क्या होगा। आपको बताया कि उनके ग्रुप ऑफ उलमा ने जो फतवे दिए वो क्या थे कि किसी मरीज के लिए दुआ करना, आप कहीं जाते हैं कोई मरीज कहता है मेरे लिए दुआ कर दो, क्या ये काम है कि नहीं काम, इसको शिफा दे दो ये काम है कि नहीं काम, हाँ ये काम है, तो बस हफ्ते के दिन हम किसी के लिए दुआ मांगने का भी काम नहीं कर सकते। आज भी कुछ ऐसे यहूद है कि हफ्ते की रात से पहले फ्राइडे की रात को अपनी लाइट्स जला देते हैं और पूरा हफ्ते का दिन जलती रहती है, और इतवार का जब सूरज निकलेगा तो फिर वो खोलेंगे, कहेंगे नहीं हफ्ते को नहीं काम करना। ये एक्सट्रीमिज्म है, ये शिद्दत होती है। अल्लाह हमारा ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ हम तो अपने रब को समझे भी नहीं, जितना वो प्यारा और जितना वो हमारे गुनाहों को छुपाने वाला है, अगर हम अपने रब वाली सिफात अपने अंदर ले आए ना तो कम अज कम लोगों का तो जीना हराम ना करें। तो बहरहाल हजरत ईसा से अल्लाह ताला ने ये काम लिया। और आप देखिए फत्तकुल्लाह वतीउन में क्या लिखा है, किसका डर सिखा रहे हैं हजरत ईसा, अपना अल्लाह का, और इताअत किसकी, मेरी। यही है नबी का मुकाम, डर अल्लाह का और तरीका मुझसे सीख लो, यही हर नबी ने कहा। आगे आप पढ़ेंगे एक सूरत में हर नबी के नाम के साथ यही आएगा,